नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की FM गोल्ड प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। छूलो आसमान कार्यक्रम में आज आपसे रूबरू होंगे जाने माने बिजनेसमैन, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के वाइस चेयरमैन, इंडिया के पहले प्राइवेट सेक्टर पोर्ट दिघी पोर्ट के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, पोलैंड के राष्ट्रपति द्वारा कमांडर क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित, रशियन महासंघ के द्वारा दिए गए पुष्किन पुरस्कार के विजेता और समाज कल्याण के लिए सबसे आगे रहने वाले श्री विजय कालंत्री। इनसे बातचीत करेंगे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज और इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिट्टरसेन।
विजय कालंत्री साहब, वेलकम टू ऑल इंडिया रेडियो।
धन्यवाद।
मिस्टर कालंत्री तो बहुत मशहूर बिजनेसमैन है, लेकिन सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, इनके बहुत पहलू हैं। अपने करेंगे अभी ये सारी बातें। पहले बताइए हमको कि बचपन आपका किधर था, कहाँ हुआ? बॉम्बे में ही हुआ? और आपके ग्रोइंग ईयर्स क्या थे, स्कूल कॉलेज क्या करा आपने?
मैं मुंबई में पैदा हुआ और मुंबई में मेरी स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग मेरी हिंदुविद्या भवन में हुई और मैंने डिप्लोमा किया सासमीरा में टेक्सटाइल का। तो वो मेरा बचपन था, मगर क्रिकेट में, टेबल टेनिस में, कैरम में, स्पोर्ट्स में काफी रुचि रखता था और साथ में सोशल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, कोई भी एक स्कूल कॉलेज की एक्टिविटीज हो
उसमें एक्टिव
तो मुझे हमेशा इच्छा होती थी कि भाग लूं, सपोर्ट करूं, कुछ ना कुछ मैं भी कंट्रीब्यूट करूं। तो ये मेरा चलते आया है और मिलनसार तो था ही, तो सब दोस्त फ्रेंड्स, सब गेट टुगेदर, ये सब होते रहता था। तो स्कूल डेज से ही एक संस्कार ऐसे बन गए या एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि दोस्ती भी होते गई और साथ में कुछ ना कुछ और एक्टिविटी भी चलते रही।
तो और एक्टिविटी ज्यादा चली या स्कूल ज्यादा चला?
स्कूल तो चला ही, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट नहीं था, स्टूडेंट अच्छा था,
हमारे जैसे ही थे,
पास हो जाते थे,
मगर
साथ में ये सब एक्टिविटी होने से एक जनरल नॉलेज, एक वातावरण क्या हो रहा है आजू बाजू सब पता लगता था और वो मुझे लगा कि काफी फायदेमंद रहा मेरे लिए आगे जाके।
तो पॉलिटिशियन कैसे नहीं बने आप?
नहीं, पॉलिटिक्स में मैंने रुचि ली, ऐसा नहीं रही, पर मुझे पॉलिटिक्स में पहले तो कोई पदवी में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे संबंध थे सबसे, मैं फॉर्चुनेट हूं कि छोटी उम्र में मैं प्राइम मिनिस्टर को मिल सका और कई मिनिस्टर को जानता था, कई लोगों से संबंध रहा। बाद में मैंने थोड़े दरसे के बाद, थोड़े सालों के बाद मैंने सोचा कि कुछ करूं। सबसे पहले मुझे ऑफर हुआ था राज्यसभा 84 में। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही बहुत कुछ कर रहा हूं और मेरे ऐसे ही इतनी एक्टिविटीज है लाइफ में और ऐसे ही मुंबई में और सब मुझे जानते हैं लोग, तो मुझे क्या जरूरत है। और पहले सोचता था पॉलिटिक्स में क्या करेंगे जाके, अपना काम नहीं है, क्योंकि कई बातें होती है पॉलिटिक्स में, वो बातें कई अपने नेचर में या कल्चर में नहीं है। बाद में मैंने पॉलिटिक्स में जब ज्यादा हुआ तो मैंने इंटरेस्ट लेके मैं महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्रेजरर बना और मुझे दो टर्म,
मुझे ऐसा कुछ ख्याल है कि आप इन्वॉल्व थे।
हाँ, 6 साल तक रहा मैं ट्रेजरर। दो इलेक्शन मैंने कांग्रेस के लड़ाए उस टाइम।
अच्छा।
99 के और 2004 के, तो 6 सालों में 2 इलेक्शन हुए। तो काफी एक्सपीरियंस मिला और एज ए ट्रेजरर, मतलब प्रेसिडेंट के बाद ज्यादा करके ट्रेजरर एक इम्पोर्टेंट होता है और महाराष्ट्र का ट्रेजरर और नॉन महाराष्ट्रियन होके, मैं तो मुंबई का हूँ, नॉन महाराष्ट्रियन, फिर भी 2 टर्म मुझे दी और कहा, तो मुझे माधवराव जी सिंधिया ने कहा था कि आप ट्रेजरर बनो महाराष्ट्र के। कई लोग नहीं चाहते थे, होते थे, माधवराव जी बोले नहीं, मेरे ख्याल से आप राइट आदमी है।
अच्छा, तो यंग एज में बन गए होंगे।
हाँ, मतलब 50s।
ओके।
उसके पहले कांग्रेस में रजनी पटेल और ऐसे कई, SB चौहान, शंकर राव जी चौहान, सबसे मेरे अच्छे संपर्क रहे और अच्छे संबंध रहे एंड तक, जब तक वो थे तब तक मेरे अच्छे संबंध, जिनसे भी संबंध रहे उनसे अच्छे
ही रहे। मेरे भी आपके साथ संबंध होते होते मेरे ख्याल से 30-35 साल हो गए।
ज्यादा हो गए।
मैं तो कभी भी आपको फोन पिकअप करके बोल सकता हूँ कि भी ये करना है।
नहीं, आपसे तो ना कोई बिजनेस के संबंध नहीं, आपसे तो फैमिली संबंध है,
पर्सनल फ्रेंडशिप है,
एक लगाव है मुझे आपसे, तो मुझे अभी अच्छा लगता है आपसे बात करना, मिलना।
इस बीच में अपने गाना सुनेंगे, आपका कोई फरमाइश है खास?
मुकेश के गाने काफी पसंद है।
मुकेश तो मेरे भी फेवरेट है।
तो मुझे पता है कि उनके जो गाने हैं, एक तो क्या है कि हम जैसे जो गा नहीं सकते वो भी बाथरूम सिंगर बन जाते हैं मुकेश के गाने,
तो वो भी नहीं बना
सुन के। तो मुकेश के गाने गुनगुनाना बहुत सरलता से हो सकता है। और काफी गजलों का भी शौक है क्योंकि मैं एक इंटर कॉलेजिएट सिंगिंग कॉन्टेस्ट करता था।
अच्छा,
जब मैं जेसिस का प्रेसिडेंट
करते थे,
मैं सिंग नहीं करता था, ऑर्गेनाइज करते। जब मैं जेसिस का प्रेसिडेंट था और वो था 1966, तो मेरी एज बहुत कम होगी उस टाइम, मतलब 17-18 साल। तो मैं वो कॉन्टेस्ट में कई अच्छे अच्छे
सिंगर्स को लाते थे,
20-20, 40-40 सिंगर, 100 जन पार्टिसिपेट करते थे, फाइनल 20 में होते थे। फिर उसमें जो सिंगर, तो अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास, रानो मुखर्जी, राजन कपूर, महेंद्र कपूर के लड़के, अशोक कुराना, ये सब सिंगर हमारे वो कॉन्टेस्ट के फाइंड है।
चलिए मुकेश जी का गाना सुनते हैं।
मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भाले भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया खाबों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने।
आपका बैकग्राउंड जो है बिजनेस फैमिली का बैकग्राउंड है या प्रोफेशनल बैकग्राउंड है? आपके पिताजी क्या करते थे?
मेरे फादर बिजनेसमैन थे, मेरे दादा भी बिजनेसमैन थे, सो हमारा बैकग्राउंड बिजनेस का ही है। हमारे फादर का टेक्सटाइल्स का और टेक्सटाइल मशीनरी का बिजनेस था और काफी अच्छा था। वो इंडिया में भी मशीनरी की काफी फ्रेंचाइज थी उनके पास और ओवरसीज की भी।
अच्छा।
तो हम लोगों कई टेक्सटाइल मिलों में मशीनें सप्लाई करते थे और टन की बेसिस पे भी करते थे, प्लांट्स मशीनरी
पीसी,
और उसी बेसिस पे कई बार लेते थे और रिहेबिलिटेट करके रिकंडीशन करके वापस
देते थे,
वापस दूसरी जगह लगा देते थे प्लांट्स। और बाद में हमारे स्पेशलाइजेशन हो गया वुलन मशीनरीज में।
अच्छा।
तो जितने पानीपत, लुधियाना और अमृतसर में काफी प्लांट्स जो लगे ब्लैंकेट्स के और सबके, चाइना वॉर के बाद काफी उसकी इमरजेंसी आई के लिए और प्लांट्स लगे थे, क्योंकि चाइना वॉर के टाइम ब्लैंकेट्स की शॉर्टेज हो गई थी, हमारे यहाँ वुलन्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो काफी प्लांट्स लगे और ज्यादातर प्लांट्स हमारे पिताजी ने सप्लाई किए।
ओके। पर आपने कंटिन्यू नहीं करा टेक्सटाइल?
नहीं, टेक्सटाइल भी हमने कंटिन्यू किया, हमने वुलन मिल लगाई, वुलन यान की जो महाराष्ट्र में है, और वो हमने करीबन 25-30 साल चलाई। उसके बाद हमने डाइवर्सिफिकेशन किया, मैंने वो मेरे फैमिली के साथ नहीं, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर में। पहले मैंने सोचा पावर प्लांट लगाऊंगा, पावर प्लांट नहीं हुआ तो मैंने पोर्ट का प्रोजेक्ट लगा दिया आपने। तो सी पोर्ट का, और वो अभी ऑपरेशनल है। और 2012 से ऑफकोर्स काफी दिक्कत आती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, मगर और ना वो मेरा कोई बैकग्राउंड था इंफ्रास्ट्रक्चर का, बट कोशिश की और भगवान के आशीर्वाद से सक्सेसफुल रहा। और आप जैसे कई दोस्त थे जिनके कारण भी मुझे उसमें प्रोत्साहन मिला।
तो कितना बड़ा पोर्ट है, कितना टनेज है, क्या किस तरीके से कैलकुलेट होता है पोर्ट का साइज?
ये बर्थ से कैलकुलेट होता है। एक बर्थ करीबन 4.5-5 मिलियन टन कैपेसिटी की होती है। आज की तारीख में हमने 30 मिलियन टन का प्रोजेक्ट बनाया है।
ओके,
30 मिलियन, बाद में एक्सपांड भी कर सकते हैं। और मेन दिक्कतें आती है इसमें रोड और रेल कनेक्टिविटी। परमिशंस की तो आती है, 37 परमिशंस लगती है एक पोर्ट बनाने में।
ओके,
तो पिलर टू पोस्ट तो जाना ही पड़ता है, मगर उसके अलावा काफी लोकल इश्यूज होते हैं, काफी लोगों को साथ लेना पड़ता है।
नेचुरली इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
में एक बात है, एक माहौल ही कुछ अलग होता है। और दिक्कतें भी आती है, मगर अच्छा भी लगता है कि कुछ हमने किया। और ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में प्राइवेट पोर्ट भी 10-12 के ऊपर नहीं होंगे, और पब्लिक पोर्ट्स भी 12 के ऊपर नहीं।
बल्क कार्गो हैंडलिंग है या नॉर्मल कार्गो?
अभी हम लोग बल्क और ब्रेक बल्क कर रहे हैं, और एक साल के बाद कंटेनर भी करेंगे।
ये बताइए कि आपने खुद का एक चेंबर चालू कर दिया था, AIAI, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज,
एक्चुअली
कैसे हुआ ये?
एक्चुअली स्पीकिंग, सबसे पहले मैं था एसोसिएशन ऑफ मशीनरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन।
ओके,
उसका मैं 73 में प्रेसिडेंट बना, और उसके बाद मैं ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन में गया। उस समय AIAI भी ऑर्गेनाइजेशन चालू था, ऑल इंडिया
एसोसिएशन ऑलरेडी।
ये बाहुभाई चिन्हे ने फॉर्म किया था।
अच्छा,
1956 में
IMC वाले?
हाँ, IMC वाले और फिक्की वाले।
फिक्की वाले
बाहुभाई चिन्हे ने फॉर्म किया था कुछ एंटरप्रेनर्स को लेके, 50 एंटरप्रेनर के साथ।
ओके,
और 1956 में डीरेगुलेशन।
ओके,
और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए थे।
अच्छा,
तो उन्होंने स्टार्ट किया था, और एक GD बिरानी थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा चेंबर में कमेटी मेंबर बनिए। तो हमने कहा अभी आपके साथ तो संबंध है तो बन जाएंगे, क्योंकि हम महेश्वरी प्रगति मंडल में उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा तुम जरा इसमें भी एक्टिव इंटरेस्ट लो, क्योंकि तुम ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स में इंटरेस्ट लेते हो, मशीनरी मैन्युफैक्चर में हो, तो हमारे साथ भी आओ करके आस्ते आस्ते इंटरेस्ट लिया। उसके बाद 2-4 प्रेसिडेंट और बने, तो उसके 8-10 साल बाद उन्होंने कहा कि आप टेक ओवर कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनसे चल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो लोग IMC की कंपटीशन कई लोग करना चाहते थे नहीं, कई लोग बोले कि हम फिक्की की कंपटीशन क्या करें, तो आप चलाना चाहते चलाओ नहीं तो हम चेंबर बंद कर देंगे।
ओके,
तो हमने कहा बंद नहीं करना चाहिए। जो चीज स्टार्ट हुई तो हमने इस चेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हम और कमल मोरार का, और हम लोग ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया, और आज की तारीख में एक इम्पोर्टेंट चेंबर हो गया है।
बहुत इम्पोर्टेंट है,
जिसको गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज करती है, स्टेट और सेंट्रल, और कई कमिटीज पे भी हम गवर्नमेंट की है, और फॉरेन डेलीगेशन भेजना, इंडिया में बुलाना, ट्रेड को प्रोत्साहन देना, कैसे
बहुत एक्टिव चेंबर है। मैं भी मेंबर हूँ,
सपोर्ट
करनी, आप जानते हैं कि नहीं,
आप मेंबर मुझे पता है।
एक गाना और हो जाए,
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी घनी छांव है मेरी खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयां सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयां सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमटी है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहे उम्र भर यूं ही उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही, मैं जानता हूं कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूं कि तू गैर है मगर यूं ही, कभी कभी मेरे दिल में।
इसके लगते लगते आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के भी वाइस चेयरमैन बन गए हैं काफी साल से, मेरे ख्याल से 10 साल से हो कुछ।
करीबन मैं 10 साल से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाइस चेयरमैन हूँ और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पहले मेंबर भी था मैं। उसके होते हुए मैं एशिया पैसिफिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में डायरेक्टर्स के लिए इलेक्शन लड़ा और जीत गया, तो न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन के बोर्ड पे हूँ मैं, रिप्रेजेंटिंग एशिया पैसिफिक रीजन, और अच्छे वोटों से हर बार जीतता हूँ। एक दो बार तो मैं फर्स्ट आया था और हाईएस्ट वोट मिले थे, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। फिर हम कई एक्टिविटी ऐसी करते हैं जो इंटरनेशनल रिलेटेड है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिनीवा, और ऐसे कई वर्ल्ड चेम्बर्स के साथ, उनके साथ मिलकर भी हम कई काम करते हैं। दूसरा इंडो पोलैंड चेम्बर है हमारा, इंडो रशिया चेम्बर है जो हम लोग रशिया इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाते हैं, मॉरिशस के साथ काफी ट्रेड बढ़ाते हैं। फोकस चेम्बर्स है ये जो एआई के साथ एफिलेटेड है,
ओके,
और वो उस रीजन में फोकस करके काम करते हैं, और काफी कैसे हिंदुस्तान के साथ बिजनेस बढ़े।
तो इंडिपेंडेंट चेम्बर्स हैं के ये?
इंडिपेंडेंट चेम्बर है मगर एफिलेटेड है।
ओके, वो आपके यहीं चलते हैं?
वो हमारी ब्लेसिंग से चलते हैं।
अंडरस्टैंड,
सपोर्ट, ब्लेसिंग्स। और यहाँ से कभी भी कोई डिग्निटी आता है तो पहले ये चेम्बर में आते हैं, उसके बाद वो लोग कोई एक्टिविटी देखते हैं, इस तरह व्यवस्था तो जब भी हो। और इन्होंने हम लोग को रिकग्नाइज भी अच्छी तरह किया हुआ है, जैसे पोलैंड ने मुझे कमांडर क्रॉस अवार्ड दिया फॉर प्रमोटिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड, जो वहां का हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियन, और रशिया ने मुझे पुस्किन अवार्ड दिया है ट्रेड प्रमोशन के लिए, जो वहां का अगेन हाईएस्ट अवार्ड है।
आई एम कमिंग टू द अवार्ड्स। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है अभी कुछ नया एक और खोला है पुणे में, अब आउटसाइड बॉम्बे, इससे कुछ न्यूज आया था।
हिंदुस्तान में 20 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लाइसेंस दिए जो न्यूयॉर्क से इश्यू होते, और मुंबई में है, पुणे में खुला है, नवी मुंबई में भी है।
नवी मुंबई,
मगर 4 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हम चलाएंगे, 4 लाइसेंस लिए, मुंबई, जयपुर, भुवनेश्वर और गोवा। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटीज चालू है, 4 ब्रांचेस खोली हमने, और बाकी जगह पे दूसरे लोगों ने फ्रेंचाइज लिया और खोलेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रिप्रेजेंट्स अ सिटी।
यस, ओके।
एक सिटी में एक ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो सकता है वर्ल्ड ओवर। 330 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है 100 कंट्रीज में। और इनकी 10 लाख मेंबरशिप है।
तो इसकी फंडिंग कैसे होती है, ये मेंबरशिप से?
मेंबरशिप से होती है। और दूसरा, हर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक क्वालिफिकेशन होता है कि आपके खुद की बिल्डिंग हो, उसमें आपका खुद का एग्जीबिशन सेंटर हो और बिजनेस ऑफिसेज हो,
लाइक कॉन्फ्रेंस रूम्स हो,
कॉन्फ्रेंस रूम्स हो, फाइव स्टार होटल भी है कई वर्ल्ड ट्रेड सेंटरों के साथ, तो वो भी एक पार्ट ऑफ एक्टिविटी है। तो उधर से जो रेवेन्यू आता है उससे आप रिसर्च में खर्चा कीजिए, एक्टिविटीज में खर्चा कीजिए और डेवलपमेंट में खर्चा कीजिए।
चलिए एक गाना और सुन ले।
सावन का महीना पवन करे शोर,
सावन का महीना पवन करे शोर,
पवन करे शोर,
पवन करे शोर।
अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
पवन करे
शोर। हाँ जिया रारे झूमे से जैसे बन माना छे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रारे झूमे से जैसे बन माना छे मोर,
अभी बताइए आपके अवार्ड्स, आपके तो बहुत भरपूर अवार्ड्स हैं जो लिस्ट है, तो मैं लिस्ट तो नहीं पढ़ूंगा, आपके हिसाब से मेन मेन क्या है?
मेन मैंने बताया आपको, कमांडर क्रॉस अवार्ड जो मुझे पोलैंड गवर्नमेंट ने दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड, और पुष्किन अवार्ड जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने दिया था, अब दो साल पहले आए थे जब उन्होंने अनाउंस करके गए थे, ट्रेड और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, राजस्थान उद्योग अवार्ड है, ऐसे कई जगह रिकग्नाइज होके हिन्दुस्तान में तो कई अवार्ड दिए हैं, बट सब दोस्तों ने ही मतलब ये सोचा कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो इन्हें कुछ,
हमारे ऐसे कोई दोस्त नहीं है जो हमको अवार्ड देते हैं, ये कैसे मैनेज करा है आपने?
मैंने मैनेज नहीं किया, मैनेज नहीं होता है अवार्ड ऐसे क्या है कि आज हाईएस्ट अवार्ड भी कोई मिलता है तो लगता है कैसे मैनेज किया, मैनेज नहीं होता है, ये
अपना हो जाता है, अपने आप अपने काम से होता है,
काम से होता है, और कभी कहीं इन्फ्लुएंस भी नहीं लगाई, वो लोग इतना काम देख के फिर हमारे सेक्रेटरी से बात करते हैं, कई बार मुझे बाद में पता लगता है अवार्ड के कि ये इन्होंने हमारी ऑफिस से इन्फॉर्मेशन ली, क्योंकि हमारे ऑफिस के सेक्रेटरी को ही वो लोग बोलते हैं कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कल अवार्ड नहीं मिले तो इनको बुरा लगेगा, इसलिए हमें मत बताइए, तो ऐसा। मगर एक रिकग्निशन जेसीज अवार्ड मुझे मिला था, फिर बॉम्बे कलेक्टर ने भी मुझे अवार्ड दिया था फॉर वॉर विडो का काम के लिए, टीचर्स डे के लिए, वेलफेयर फंड्स और सब इकट्ठा जमा करने के लिए भी कई बार, मैं सोशल एक्टिविटी हमेशा करते आया हूँ फॉर एनी गुड कॉज, और ऐसा लगता है कि करना चाहिए हमें। जैसे एक बहुत छोटी एक्टिविटी हम करते थे, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन था उसमें मेरी वाइफ है मोहिनी कलंत उसके साथ, तो ये हॉस्पिटल जाते थे हर संडे, वहाँ फ्रूट और ये सब बांटते थे।
अच्छा।
और वो भी ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स, ऐसे मैंने 50 वीक तक किया था।
अच्छा।
कि हर संडे जाना और सब पेशेंट्स को फ्रूट बांट,
क्योंकि हुआ उसका
नहीं
तो जनरल
ऐसे तो जब बॉम्बे में डिल्यूज हुआ तो हमने वो साकीनाका में पूरा जेसीबी और सब भिजवा के पूरा उधर क्लियरेंस किया था, तो पहले तो बीएमसी ने हमको बोला हम रिकग्निशन करेंगे, चिट्ठी भेजेंगे, बाद में कुछ होता नहीं है, तो हमें रिकग्निशन के लिए हर काम करते भी नहीं है, हमें करना इसलिए से स्कर्सिटी रिलीफ हुई थी महाराष्ट्र में 72, तो पूरी भिवंडी में हमने एक विलेज अडॉप्ट की थी, वहां पे हमने खाना पीना सब दिया था, लोगों को रिहेबिलिटेट किया था, और काफी खर्चा करके कई लोग के घर भी बनाए थे, तो मगर लोग का सपोर्ट हमें मिला है। जैसे एक बार मुंबई में गार्बेज स्ट्राइक हो गई, तो 1971-72 में जब गणतरा साहब मेयर थे, तो उन्होंने कहा तुम ये यंगस्टर लोग खाली 5-star में फंक्शन करते हो, पार्टी करते हो, कुछ करते नहीं हो, तो कुछ करिए। तो मैंने कहा बताइए क्या, बोले कचरा साफ करिए। पहले मैंने कहा मेरे जो जेसीएस के मेंबर थे 40 आदमी आए मीटिंग में, तो 10 आदमी ने असाइन किया कि हम आएंगे, अच्छे घराने के लड़के लड़कियां, तो हमने वालकेश्वर में चौपाटी से लेके राजभवन तक करना था। सरप्राइजिंगली मैंने एंड किया तो मेरे साथ 125 आदमी थे, और हमने 22 ट्रक भरी, और एंड में मेयर मिले हमको राजभवन पे, और मेयर ने गवर्नर को फोन किया कि इन्होंने लड़कों ने इतना अच्छा काम किया अलिया और जंग साहब के टाइम, तो उन्होंने हमको राजभवन में बुलाया और चाय पिलाई, एक्स टेम्पो था सभी।
अच्छा।
तो हमने चालू किया था 12:30 और एंड हुआ, और वो गार्बेज के टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया एक्सप्रेस के पेपर का मुझे आज भी याद है, फ्रंट पेज पे उन्होंने फोटो छापा था कि इन्होंने ये काम कैसे किया, ये तो अच्छे घराने के अच्छे सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, होटल वाटल में घूमने वाले लोग हैं।
अभी तो मोदी साहब ने बहुत बड़ा
स्वच्छ भारत
का मिशन कर दिया है, बहुत ही बड़ी चीज चालू करी है।
ये क्या है, गवर्नमेंट ने तो इनिशिएटिव लिया है, ये हर इंसान को लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम ठीक है, इनिशिएटिव
का है,
बट एक ही अच्छी चीज हो रही है अभी तक जो मैंने देखा है कि स्कूल के बच्चे उसमें बहुत अवेयरनेस आ रही है, तो 10 साल बाद तो इसका बहुत सक्सेस होगा। तो मोदी साहब की कई पॉलिसीज है जो शॉर्ट टर्म है, कई लॉन्ग टर्म है, ये सब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है, उसका रिजल्ट हमें जब मिलेगा तो लगेगा कि तो अच्छा हुआ, और एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। मेनीज आप कोई भी चीज या कोई भी चीज को सक्सेस करना है तो उसका मोटिवेशन और अवेयरनेस दो चीज बहुत जरूरी है सक्सेस के।
एक गाना सुन ले,
जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। अपना सीना ताने अपना सीना ताने मंजिल कहां कहां रुकना है ऊपर वाला जाने ऊपर वाला जाने पढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये बदलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी चले जीवन की नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की पूछे राह वतन की चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी हम बिगड़े दिल शहजादे बिगड़े दिल शहजादे हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे जब जब करे इरादे सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी
आप कहीं के ऑनरी कौंसल हैं क्या क्या मैं मुझे ऐसे ध्यान पड़ रहा है
ना उज़्बेकिस्तान
तो आपके प्रोफाइल में तो है नहीं
उज़्बेकिस्तान
है तो प्रोफाइल में क्यों नहीं डाला था वो छुपाने वाली बात तो है नहीं
कई चीज देते छुपाने वाला नहीं है तो गाड़ी पे भी लिखा हुआ
है नंबर
प्लेट भी लिखना पड़ता है
अच्छा अभी उसमें फ्लैग भी मिलता है क्या गाड़ी का
फ्लैग भी मिलता है गाड़ी के लिए फ्लैग मिलता है घर के लिए भी है और कुछ इम्यूनिटीज भी है
उज़्बेकिस्तान
कुछ प्रिविलेजेस भी है उज़्बेकिस्तान एक्चुअली मेरा कोई कॉन्सुलेट बनने में इंटरेस्ट नहीं था बोला एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मगर वो लेनी पड़ी क्योंकि मैं बैंक्वेट में गया था प्रेसिडेंट के वहां पे हमारे संबंध हुए तो अपने इंडियन प्रेसिडेंट भी थे वहाँ प्रतिभा पाटिल जी
ओके
तो वो डिनर में बोलने लगे आप मुंबई में एक अच्छा आदमी ढूंढ रहे थे
ये है
तो कलत्री जी को बना दीजिए तो उन्होंने बोला मेरे माइंड में भी था
ओके
मैंने तो बोले हमने इनको बुलाया था आज बैंक्वेट में इसी तो फिर वो बात करते करते फिर अभी हमने कहा तो उनके एम्बेसडर ने कहा और कई दोस्तों ने मदद की कि चलो बन जाओ मैंने कहा कहाँ लेंगे बोले नहीं नहीं तो मेरे कमल मुरा का मुझे अमेश बोलता है तुम ना नहीं बोलने का यू मस्ट डू इट
ओके
फिर मेरी वाइफ को पूछा मैंने बोला वो बोल ही रहे तो ले लो अब क्या करेंगे तो मोहिनी बोल
गुड
वाइफ का भी सपोर्ट रहता है मेरे को हर चीज
बहुत जरूरी है
वाइफ बच्चों का सबका
जो आप काम करते हैं इन सोशल वर्क तो फैमिली तो पीछे चाहिए ही है
बट मेरे आई लॉस्ट माय पेरेंट्स इन वेरी अर्ली एज
ओके
मदर एट एज ऑफ 16 एंड फादर एट ऑफ 18
वेरी यंग बोथ ऑफ देम
सो गॉड इज काइंड बट आई हैड डिटर्मिनेशन एंड विल पावर टू गो अप इन लाइफ एंड फ्रेंड्स लाइक यू
वेरी गुड तो इतना तो हमको मतलब आपने समझा
पक्का
गवर्नमेंट
नहीं मैं गोयल साहब को भी समझता ही वॉज आइडियल यू नो आई सी सेम एंड ही वॉज बिसाइड सो मच ऑफ वर्क एज अ डॉक्टर टू हैव इंटरेस्ट इन सोशल वर्क एंड सपोर्ट पीपल एंड हर एक से मिलना जुलना बिग थिंग लाइक सो यू हैव टू सैक्रिफाइस फॉर दैट इट डोंट गेट इजीली
गोयल साहब तो 8 बजे सुबह से जो निकलते थे घर से 12 बजे पहुंचते थे रात को
चलो मेरा एक आध घंटे का फर्क है बाकी ज्यादा वैसा ही है
गवर्नमेंट के साथ आप क्या करते हैं आप बहुत पोजिशन है आपके गवर्नमेंट में
गवर्नमेंट की कई एडवाइजरी कमिटीज और कई फोकस कमिटीज पे और टास्क फोर्स पे मैं हूँ. मुझे स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री में काफी रुचि है, तो मैं काफी सजेशंस देते रहता हूँ गवर्नमेंट को और फाइनेंस में भी. तो मुझे लगता है कि जो आज भी फ्रैंक बात करे या फ्रैंक व्यूज हो तो देने चाहिए गवर्नमेंट. और मेरे जहां तक होता करता हूँ, मुझे लगता है और भी ऐसा एक ग्रुप बने, प्रेशर ग्रुप्स और टास्क फोर्स, कि हर आदमी भी ऐसे सजेशंस देते जाए और फ्रैंक सजेशंस. तो जो कई दिक्कतें आती है हमें, जैसे जीएसटी के बाद आई या कई और लॉज में आती है, टैक्सेशन लॉज में आती है, वो नहीं आएगी. मगर क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट को हम क्यों लिखे, गवर्नमेंट बुरा मान जाएगी, हम तकलीफ में आ जाएंगे.
बस वही डर.
ऐसा कुछ नहीं होता है. गवर्नमेंट को ये पता है कि कौन क्या इंटेंशन से लिख रहा है. अगर हमारा इंटेंशन रॉन्ग नहीं है तो गवर्नमेंट आपको सही तरीके से लेती है. मुझे पता है, मैंने तो फेस पे भी बात की है कई बार कि सर ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये होने से ये होगा वो होगा, और ये आप गलत कर रहे हैं. कोई एक्शन नहीं हुई आज तक, कल का नहीं पता है.
अब क्या होगी, आप ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए हैं, एवरीबडी नोज यू आर अ वेलविशर ऑफ एवरीबडी.
बैड इंटेंशन नहीं होना,
बैड इंटेंशन.
आप कोई भी सजेशन करे या कोई को भी कुछ सलाह दे, उसके पीछे आपका इंटेंशन ठीक होना चाहिए.
ये दो चीजें और पूछूंगा मैं एक गाने के बाद.
एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे चारे तेरे बोल. ला 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 ला. मैं कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए. अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए. ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए. करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को. ला 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 ला, ला. Sawal go के तेरे मेरे मन की डोरी, ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी, करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से दो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला ला
आपके हिसाब से इंडिया का जो चल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट तो सब कुछ कर ही रही है, प्राइवेट सेक्टर भी लगा हुआ है, इज देयर एनीथिंग मिसिंग? कुछ आपके हिसाब से कोई पॉलिसी में चेंज होना चाहिए क्या गवर्नमेंट के?
नहीं, आज जब ये गवर्नमेंट आई थी पावर में तो इन्होंने कहा कि टैक्स टेररिज्म, हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो एक सब्जेक्ट है और इंटेंशन भी क्लियर है गवर्नमेंट का कि हमें सहूलियत देनी है धंधे में, मगर हो नहीं रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस भी काफी पॉलिसी की, वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ये कोई नहीं देख रहा है। आज जैसे कि हमारे रोड में जो इतना काम हो रहा है, पावर में, रेलवे में, तो दिख रहा है और पांच साल बाद और दिखेगा, वैसे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से और फॉर्मेलिटीज में कम हो, ये भी देखना चाहिए। टैक्सेशन लॉज थोड़े कम्बरसम है, सिंपल हम बोलते हैं वर्ल्ड ओवर, यूएस का भी एग्जाम्पल देता हूँ, टैक्सेशन लॉज आर मेड फॉर द डम्बेस्ट पीपल, मतलब बेवकूफ से बेवकूफ आदमी फॉर्म भर के अपना रिटर्न फाइल कर सके। हम टैक्सेशन लॉ बना रहे हैं इंटेलिजेंट आदमी के लिए, तो हमें एक सीए की भी जरूरत है, एक असिस्टेंट की भी जरूरत है, नहीं होनी चाहिए। टैक्सेशन लॉ इतना सिंपली हो, इम्प्लीमेंटेबल हो, ताकि उसमें न ब्यूरोक्रेसी का रोल है ना हमारा रोल, सिंपल है, भर दिया हो गया रिटर्न फाइल्स, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा और पब्लिक भी खुश रहेगी। आज टैक्सेशन लॉ से लोगों को डर है, तो वो नहीं,
तो आपके हिसाब से थोड़ा टैक्सेशन में वी नीड सम चेंजेस,
टैक्सेशन लॉ
इम्प्रूवमेंट,
जहां भी हो कम्बर्सम लॉ वो सिंपल होना चाहिए। लॉ डम्बेस्ट के लिए बनता है, लॉ लॉयर के लिए और सीए के लिए नहीं बनता है।
फिर वो कहां जाएंगे?
नहीं, वो रहेंगे ना, आपको फिर भी रिटर्न फाइल करने हैं ना, सब करना है, मगर आपको भी समझ आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आज जैसे मैं बैंक गारंटी फॉर्म साइन करता हूँ और मैं मेरा रिटर्न साइन करता हूँ, दोनों में साइन ही करता हूँ, मैं समझ में नहीं आता मैंने क्या साइन किया है, और अगर पढ़ के साइन करूँ तो मैं साइन नहीं करूँ।
अभी ये स्टार्टअप बहुत यहाँ पर बात चल रही है इंडिया में, और सही भी है क्योंकि अपना जो इंडिया है ये तो बहुत यंग नेशन है, अब सब जानते हैं कि हर एक चीज आ रही है बार बार। आपके हिसाब से क्या सही चल रहा है क्या? 10,000 करोड़ का फंड मोदी जी ने ये करा डिक्लेयर, पर उसमें से यूज तो हुआ है अभी तक सिर्फ 500 करोड़, तो क्या करें, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को या क्या एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए इसको जल्दी आगे बढ़ाने के लिए?
स्टार्टअप, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये तीनों अच्छी नीयत से गवर्नमेंट ने अनाउंस किए और नरेंद्र मोदी साहब का विजन है कि ये तीनों से जॉब क्रिएट होगा, एंटरप्रेनरशिप बढ़ेगा,
वो तो होना ही है स्टार्टअप्स बढ़ जाएं तो,
इसके लिए फाइनेंस भी सिंपल रखा है 50 लाख तक तो, और विदाउट गारंटी रखा है कोलेटरल। मगर ये देखना है कि एंटरप्रेनर्स जो आते हैं उनको गाइड कौन करता है? स्टार्टअप में गाइडेंस बहुत जरूरी है। मुझे एंटरप्रेनर बनना है इसलिए मैं एंटरप्रेनर नहीं बन सकता, ये विदिन से आता है। आदमी, कई एंटरप्रेनर्स आज नौकरी करने का सोच रहे, बोले रिस्क ऑल लेवे बिजनेस, जैसे मैंने कहा टैक्सेशन लॉस, फियर साइकोसिस। अरे आज कुछ लोग ने गलत किया है काम बैंक के साथ, कुछ लोग करे भी होंगे, 5% के लिए अब 95% के लिए कानून नहीं बनाते या 2% के लिए, उन्होंने गलत किया, लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, गवर्नमेंट शुड फॉरगेट दैट एंड शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस न्यू स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेनर्स एंड हेल्प एंड सपोर्ट देम। आज सिख यूनिट से उनके अगेंस्ट जो एक्शन हो रही, लोग बोले कल मैं सिख हुआ तो मेरे अगेंस्ट भी एक्शन होगा, तो उनको डर है आने के लिए। सिख इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, धंधे में नफा भी होगा नुकसान भी होगा। हाँ, इंटेंशन जिसके खराब है उनको आप पकड़िए, हर एक की इंटेंशन खराब नहीं है, तो आप उसको एक बाइफरकेट कीजिए और एंटरप्रेनर्स को कहिए कि ये साथ जो हो रहा है वो, क्योंकि एक सिग्नल अलग होता है। आज मैं भी बड़ी इंडस्ट्री लगाकर सोचता हूँ कि अरे मैंने ठीक किया गलत किया, वो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आप लगाइए रिस्क लीजिए, जो होगा हम देखेंगे, अगर आपकी नीयत ठीक है तो हम आपको गलत नहीं सोचेंगे। अब ये बोल सकते हैं कि हमको क्या पता आपकी नीयत ठीक है या नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है, पता लगता है।
मोस्टली तो सब है ना ठीक नियत से ही चालू करते हैं कंपनी
आज की तारीख
तो
में
अलोंग द वे
एक दो परसेंट हो जाती है, एक दो परसेंट का हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए पूरी पूरा देश को वो चीज नहीं होती
पेनलाइज थोड़ी।
आज क्या हुआ जैसे कि ब्लैक मनी एनपीए और ये स्ट्रांग टैक्सेस लो, इनसे थोड़ा डर बैठ गया, ये नहीं होना चाहिए।
एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ये अनइंटेंडेड क्वेश्चन है, ये आपके हिसाब आप क्या और कुछ बोलना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को?
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भारत एक बहुत महान देश है, या कोई भी गवर्नमेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी हो हमें हमारे देश के लिए अच्छा करना चाहिए, एक अच्छा कार्य करना चाहिए, हमें एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, या हम कोई भी व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, धंधे में हो, सोशल वर्क में हो, हमें अच्छी इंटेंशन से काम
करना चाहिए,
ऑनेस्टली काम करना चाहिए, सिंसियरली करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये सोचता नहीं चाहिए कि मैं इसकी मदद क्यों करूँ या क्यों नहीं करूँ। आप अच्छा कार्य करेंगे, आप अच्छे इंटेंशन से करेंगे, आप हमें आगे बढ़ेंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, जैसे लोग बोलते आए कि भगवान के गैर देर है अंधेर नहीं है, वो देर होती है, अच्छे काम का फल मिलने में भी टाइम लगता है, मगर मिलेगा, परमानेंट मिलेगा।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
थैंक यू कलंत्री साहब, ये थे विजय कलंत्री। बिजनेसेस तो बहुत हैं तो इनका सिर्फ नाम लेता हूं मैं, थैंक यू वेरी मच।
माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। ऐतबार का जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
श्रोताओं, 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में अभी आप सुन रहे थे छूलो आसमान कार्यक्रम में जाने माने बिजनेसमैन, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के वाइस चेयरमैन, इंडिया के पहले प्राइवेट सेक्टर पोर्ट दिघी पोर्ट के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, पोलैंड के राष्ट्रपति द्वारा कमांडर क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित, रशियन महासंघ के द्वारा दिए गए पुष्किन पुरस्कार के विजेता और समाज कल्याण के लिए आगे रहने वाले कालंत्री की बातचीत चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज और इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिट्टर सेन के साथ। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। सहयोग सृष्टि जाधव और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।